नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पितामह भीष्म सरसैया पर पड़ गए। युद्ध के अंदर जा सरसैया पर गिरे, वो स्थान अलग से सुरक्षित कर दिया। सब राजा लोग आए, कौरव पांडव सब आए। पितामह भीष्म ने अर्जुन से तकिया स्वीकार किया, जल स्वीकार किया, अर्जुन के पराक्रम को खूब बताया है और अंत में भीष्म पितामह ने दुर्योधन को खूब समझाया कि अभी भी तुम आपस में स्नेह कर लो और अर्जुन आदि से युद्ध करने का विचार छोड़ दो। मैं सरसैया पर गिरा हुआ आप सब लोगों को यह चेता रहा हूं कि अर्जुन को मेरे लिए भी जीतना मुश्किल हो गया, आप लोग कैसे जीत पाओगे? इसलिए आपस में संधि कर लेनी चाहिए। दुर्योधन को ये बात ठीक नहीं लगी, दुर्योधन वहां से चला गया, दूसरे लोग भी चले गए। अब पितामह भीष्म अकेले थे। सब राजाओं के चले जाने के बाद कर्ण आया, उसको मालूम चला कि भीष्म के मारे जाने का दुखद समाचार सारी कौरवी पांडवी सेना में ही नहीं दूर दूर तक फैल गया है, तो उसका भी मन बड़ा दुखी हुआ। वह भय में कांपने लग गया। जल्दी से जल्दी पितामह भीष्म के पास आया, सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह को देखकर कर्ण के आंखें आंसुओं से भर आई। उसने गदगद कंठ से कहा, हे महाबाहु भीष्म जी, जिसे आप सदा ही द्वेष की दृष्टि से देखते थे, जिसे आप सदा ही डांटते रहते थे, वही मैं राधा का पुत्र कर्ण आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। यह सुनकर भीष्म जी ने पलक उघाड़कर धीरे धीरे कर्ण को देखना चालू किया। शरीर से निरंतर खून निकलने से उनके नेत्र जो बंद थे वो धीरे धीरे खुले। उनकी वाणी में भी बहुत धीमापन हो गया। बड़े धीरे शब्दों में कहा, कर्ण कोई यहां है तो नहीं ना? यदि पहरेदार हो तो उनको भी कह दो कि वे थोड़े दूर चले जाए, तुम्हारी और हमारी कोई बात सुन न सके। सबको हटा दिया। फिर जैसे पिता पुत्र को गले लगाता है, इस प्रकार बड़ी कठिनाई से अपना हाथ उठाकर कर्ण के हाथ पर रखा और उसे खींचा और हृदय से लगाया। बड़े स्नेह के साथ टूटे टूटे शब्दों में कहा, आओ मेरे प्रतिस्पर्धी, हे कर्ण, तुम सदा मुझसे लाग डांट रखते आए हो, मेरे प्रति एक बहुत बड़ी कुढ़न तुम्हारे छाती में जमी हुई है। परंतु इस समय तुम मेरे पास आए हो। यदि मेरे पास न आते तो निश्चय तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाता। हे महाबाहो कर्ण, तुम राधा के पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं, तुम्हारे पिता सूर्य हैं। कर्ण मुस्कुराए, कहने लगे, हे महावीर भीष्म, इस बात की आपको कैसे जानकारी लगी? कर्ण, क्या तुम इस बात को नहीं जानते हो? हाँ, मैं तो जानता हूं पितामह, परंतु आपको इसकी जानकारी किससे मिली? मुस्कुराते हुए भीष्म जी ने कहा, ये बात मुझे व्यास जी से सुनने को मिली और ये बात एक बार नारद जी ने भी मुझसे कही गई। कर्ण ने कहा, हे पितामह, जब आपको ये मालूम है कि जैसे और कुंती के पुत्र हैं, ऐसे ये भी तो कुंती का पुत्र है, फिर आप मेरे से लाग डांट क्यों रखते थे? आप मेरे से द्वेष क्यों रखते थे? आपने मुझे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के समान प्यार क्यों नहीं दिया? वे भी तो कुंती के पुत्र हैं। नकुल, सहदेव माद्र के होते वे भी कुंती के ही हैं। मैं भी कुंती का हूं। आपने इन पांडवों में और मुझमें भेद क्यों देखा? क्या कारण है? पितामह भीष्म कहने लगे, कर्ण, मैं तुम्हें सत्य बात बोलता हूं, तुमसे मेरा तनिक भी द्वेष नहीं है, पर तुम बिना कारण पांडवों पर आक्षेप करते थे। मेरा मन टूटता था कि अरे कर्ण, ये तुम्हारे भाई हैं, अरे कर्ण तुम किधर चले गए? इनका और दुर्योधन का आपस में बैर भाव है, तुम बीच में क्यों आते हो? तुम दुर्योधन के षड्यंत्रों में क्यों फंसते हो? तुम्हारा दुस्साहस देखकर मेरे मन में एक अतीव पीड़ा होती थी, उस पीड़ा के कारण से मैं तुम्हें कठोर वचन कहता था। कारण, अब तो मैं इस जीवन से विदा हो रहा हूं, मेरी बात याद रखो। कोई आदमी कितना ही गुणवान क्यों न हो, यदि वह नीच पुरुषों का संग करता है तो उसकी बुद्धि नीच पुरुषों जैसी हो ही जाएगी। मुझे बहुत दुख होता था, कारण तुम दुशासन के चंगुल में कैसे फंस गए? तुम दुर्योधन के चंगुल में कैसे फंस गए? दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, इन सब के बीच में क्या तुम्हारा बैठना उचित था? इसलिए मैंने मन में बहुत कष्ट उठा करके तुमको कहा है। मैं जानता हूं युद्ध में तुम्हारा पराक्रम असही है, तुम ब्राह्मणों के भक्त हो, सूरवीर हो, दान में तुम्हारी सबसे बड़ी निष्ठा है, मनुष्यों में तुम्हारे समान कोई गुणवान नहीं है, क्योंकि तुम कुंती पुत्र हो। बाण मारने में, अस्त्रों का संहार करने में, हाथ की फुर्ती में, अस्त्र बल में तुम अर्जुन और कृष्ण से कम नहीं हो। तुम धैर्य के साथ युद्ध करते हो, तेज और बल में देवताओं के तुल्य हो। युद्ध में तुम्हारा पराक्रम मनुष्यों से भी अधिक है। पर ये अब समय निकल गया। ये सब बातें भूतकाल की हो गई। तुम्हारे प्रति जो मेरा क्रोध था अब मैंने उसको समाप्त कर दिया। निश्चय समझो कर्ण, जब आदमी संसार से विदा होता है तो उसको यहां से अच्छी चीज ले जानी चाहिए, बुराइयों को तत्काल छोड़ देना चाहिए। मुझे निश्चय हो गया है कि पुरुषार्थ से दैव के विधान को नहीं पलटा जा सकता। दैव माने भाग्य। एक बात कहता हूं, पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं और तुम यहां मुझे प्रिय करने के लिए आए हो, प्रसन्न करने के लिए आए हो, तो एक बात कहूं, वो काम तुम करोगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। तुम अभी भी पांडवों के साथ मेल कर, पांडवों के साथ जब तुम मेल कर लोगे, मेरे साथ इस बैर का अंत हो जाएगा। तुम जब पांडवों में मिल जाओगे तो दुर्योधन किसके बल पर अब पांडवों से युद्ध करेगा। मैं तो अब जा रहा हूं, तुम पांडवों से मिल जाओगे, भला अब कौरवों में कौन रहेगा। ये युद्ध यहीं शांत हो जाएगा और दोनों भाई अपना अलग अलग राज्य करेंगे। मैं ही नहीं, जो भी भूमंडल के राजा होंगे सभी आज सुखी हो जाएंगे। कारण मेरे सामने कम से कम इतना पुण्य का काम तुम कर तो लो। कर्ण ने कहा, हे महाबाहु, आपकी बातें सुनते सुनते मेरा जी तृप्त नहीं होता है। आपके मुंह से जब पहली बार मैंने ये सुना कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं, कुंती पुत्र हूं, मुझे आपने आज जो सम्मान दिया, यदि यही बात आप मुझे राजभवन में बुलाकर एकांत में कुंती का पुत्र कहते हुए बोलते कितना अच्छा लगता। पितामह, मैं इस बात को जानता हूं कि मैं कुंती का पुत्र हूं। पांडवों को इस प्रकार कष्ट में देखने पर मैं कोई अंदर से प्रसन्न नहीं, हृदय तो मेरा भी रोता है, परंतु पितामह मैं विवश। पहले तो मुझे कुंती ने ही विवश किया। कुंती को अपने पुत्र को अपने पास रखना चाहिए था। जैसे कुंती को लोक लज्जा का अनुभव हुआ, डर लगा, ऐसे मुझे भी तो अब लोक लज्जा लगेगी कि देखो युद्ध के समय दुर्योधन का त्याग कर ये पांडवों में चला गया। उधर अधीरथ सूत ने मेरा पालन पोषण किया है और ये सब कौरवों के आजीविका पर पलने वाले हैं। उन्होंने मेरा पालन पोषण किया तो कौरवों के द्वारा जब आजीविका चली है तो फिर मैं उनसे ऋण कैसे हो सकता हूं। पितामह, यदि पांडवों को आप भी इतना चाहते हैं तो फिर आज आप दुर्योधन के पक्ष में युद्ध क्यों करते हैं। अपना कर्तव्य समझ के ही तो युद्ध किया, नहीं तो आप दुर्योधन को भी बुला के कह सकते थे, दुर्योधन तुम अन्याय के पक्ष में मैं खड़ा नहीं हूं, मैं पांडवों के पक्ष में हूं। पितामह भीम ने कहा, कर्ण, पितामह भीष्म ने कहा, कारण हमारी बात को गहराई से समझो। मैंने बहुत सोच समझ के दुर्योधन का पक्ष लिया है, इसलिए नहीं लिया है कि दुर्योधन में कोई धर्म है, सच्चाई है, कोई निष्ठा है। मैं तो खूब अच्छी तरह से जानता हूं कि दुर्योधन को मेरे पर विश्वास भी नहीं था। वो मुझे केवल फुसलाने के लिए मेरी प्रशंसा करता था युद्ध में, ताकि पांडवों का पक्ष न लूं। परंतु मैं संसार को ये बताना चाहता था कि धर्म शक्ति के सामने, कृष्ण के पक्ष के सामने संसार का कोई बल नहीं होता। ये तो तुम जानते हो ना कर्ण, कि मेरे समान कौन संसार में बलशाली योद्धा है। लेकिन आज मेरी क्या दशा हुई, बाणों पर पड़ा हूं, मरना चाहूं तो मरूं, नहीं तो न मरूं। इतना कष्ट पाकर भी मैं संसार को यही बताना चाहता हूं कि देखो भगवत कृपा का बल, देखो धर्म का बल। इतना बल शरीर बल होते हुए भी मेरा बल नहीं चला भगवत बल के सामने, धर्म बल के सामने। कारण तुम अभी बालक हो, तुम इस रहस्य को क्या जानो। कर्ण ने कहा, पिता मैं आज तक दुर्योधन का ऐश्वर्य भोगा हूं, क्या उसे मैं आज हराम करूं? जैसे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण पांडवों की सहायता में दृढ़ है, उसी प्रकार मैंने भी दुर्योधन के लिए अपना शरीर, अपना धन, अपना कुटुंब, अपना पुत्र, अपना यश, सब कुछ न्योछावर कर दिया है। पिता मैं आपने तो भरी सभा में पहले ही कह दिया था कि भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, पृथ्वी पर बहुत बड़ा नाश होने वाला है। वो बात आज भी मेरे कान में है, मैं जानता हूं। परंतु पुरुषार्थ से देव के विधान को कौन मिटा सकता है? आपको मालूम था कि कौरव पक्ष हारेगा, फिर भी आपने युद्ध तो किया ना, अपने कर्तव्य का पालन तो किया ना। तो मुझे भी अपने कर्तव्य के पालन के लिए दुर्योधन के पक्ष में रहने के लिए आदेश दीजिए। मैं जानता हूं अर्जुन और कृष्ण कौन है, इनका प्रभाव बड़ा विलक्षण है, पर योद्धा को ये समझ करके शस्त्र नहीं रख देने चाहिए कि पांडव और कृष्ण अजय हैं तो हम युद्ध ही न करें। दूसरी बात, अब तो इतना बड़ा बैर बन गया है, ऐसे मौके पर संधि करना युद्ध का अपमान करना है, आपके बलिदान का भी अपमान करना है। युद्ध में कहीं कहीं आपने औचित्य देखा, तभी तो आप 10 दिन तक युद्ध करते रहे। यदि सर्वथा अनुचित होता तो आप युद्ध क्यों किए? अब मैं कैसे संधि कर सकता हूं, कैसे पांडवों के पक्ष में जा सकता हूं? हे पितामह, आपने पांडवों को विजयी होने का आशीर्वाद दिया है और पांडवों के विपरीत आपने युद्ध किया है, ऐसी सद्बुद्धि आप मुझे दीजिए कि मैं पांडवों का सदा ही अभ्युदय देखूं, उत्कर्ष देखूं, और पांडवों से विपरीत युद्ध करना पड़े तो युद्ध भी करूं। हे पितामह, अब आप मुझे युद्ध करने की आज्ञा दें, क्योंकि मैंने युद्ध करने का निश्चय कर लिया है। आपकी आज्ञा लेकर ही युद्ध करूंगा। आज तक अपनी चपलता के कारण, अपने बालपने के कारण मैंने जो कुछ कटु वचन कहा है या जिससे आपके सम्मान पर ठेस पहुंचा है, उसके लिए ये कर्ण आपसे क्षमा याचना करता है। भीष्म बोले, वाह कर्ण, तुम मेरे ही वंश में होना, तुम्हारे ये शब्द सुनकर मेरा हृदय अपार आनंद में डूब गया। कैसी दारुण घड़ी में भी तुम क्षात्रधर्म नहीं छोड़ रहे हो। यदि ये बैर नहीं मिट सकता है तो चलो मैं तुम्हें युद्ध की आज्ञा देता हूं। तुम स्वर्ग की कामना से युद्ध करो। कारण क्रोध, द्वेष, अभिमान, इन सब को अपने हृदय से निकाल करके फेंक दो। सदा सत्पुरुषों का आचरण करो। अर्जुन से युद्ध करके तुम क्षत्रिय धर्म से प्राप्त होने वाले लोकों में जाओगे। अपने बल का कभी घमंड मत करना। बल और पराक्रम का भरोसा रखना, पर घमंड मत करना। क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं। कारण मैंने शांति के लिए महान प्रयत्न किया था, परंतु सफल नहीं हो सका। इसका भी मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मनुष्य कर्म ही कर सकता है, फल पर उसका अधिकार नहीं। जाओ कारण, तुम यशस्वी बनो, तुम्हारा संसार में यश फैले, कीर्ति फैले, और तुम्हारे पराक्रम को सब योद्धा सदा सदा के लिए सराहते रहे। हे महाराज धृतराष्ट्र, भीष्म जी ने जब ऐसा आशीर्वाद दिया, कर्ण की आंखें बार बार छल छला गई और उनके चरणों में प्रणाम किया। रथ पर बैठकर वहां से सीधा दुर्योधन के पास चला आया।